हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गच्छ अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद अवचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रतिष्ठाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कन बिवड़ी संस्थापक श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गच्छ नित्यल अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामीपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीधर श्रीवास श्री गुरु भक्तवृंद की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीवगोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। राधा कुंड श्याम कुंड द्वास सपनात्म कुंड जौनल धाम की जय। जय श्री श्री राधा भगवान की। जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री श्री गुणिताय भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। संवृंद की जय। गौर प्रणंदे ऑल ग्लोरिस्ट सिंबल ओडिस हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरिस्ट सिंबल ओडिस हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरिस्ट सिंबल ओडिस हरे कृष्ण। ఆల్ గ్లోరీ శ్రీ శ్రీ గురు గురంగ శ్రేష్ఠ మదేశ వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాది ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपास्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्ण। तो आज बहुत बड़ा पवित्र दिन है। ऐसा तो ये पूरा कार्तिक महीना पवित्र दिन है, लेकिन आज एक विशेष दिन है। आज राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है, भोलाष्टमी। आज के दिन राधा कुंड का प्राकट्य हुआ था, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 36 अध्याय में इसका वर्णन है। तो मैं पहले एक श्लोक उच्चारण करूंगा, मेरे पीछे सब मेरे साथ दोहराने के लिए प्रयास कीजिए। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 36, अध्याय का नाम है वृषभासुर अरिष्ट का वध। श्लोक नंबर एक। श्री बादरायणी वाच अथ तर्यागतो गोष्ठम् अरिष्टो वृषभासुरः महिमहा कौत्कायः कंपयन खुरविख्यताम् श्री बादरायणी उवाच अथ तर्यागतो गोष्ठाम् अरिष्टो वृषभासुरः महिमहा ककुत्कायः कंपयन खुर विख्यताम् श्री बादरायणी रुवाच अथ तर्यागतो गोष्ठम् हरिशोपृषभाश्रः महीमहाकुत्कायः कम्पयन् खुरभिक्षताम्। श्लोक का शब्दानुवाद। श्री नारायणी उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अथ आगे, तरही तब, आगतः आया, गोष्ठम ग्वालों के गांव में, अरिष्टः अरिष्ट नामक वृषभासुर महीम पृथ्वी को, महा विशाल ककुत डीला वाला कायह शरीर कपाते हुए खुर अपने खुरों से विख्यतात ख्यत विख्यत। श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अवधारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात अरिष्टासुर गोपों के गांव में आया। वह बड़े डीले वाले बैल के रूप में प्रकट होकर अपने खुरों से पृथ्वी को क्षत विक्षत करके उसे कंपाने लगा। तात्पर्य श्री विष्णु पुराण के अनुसार अरिष्टासुर संध्या समय कृष्ण के गांव में प्रविष्ट हुआ, जब वे गोपियों के साथ नाचने की तैयारी कर रहे थे। प्रदुर्षार्धि कदाचितु रासक्ते जनार्दने त्रासयन शमदो गोष्ठ मरिष्ठ समुपागतः। एक बार धुंधलके के समय जब जनार्दन रास नृत्य करने के लिए उत्सुक थे तो अरिष्टासुर उन्मत्त होकर ग्वालों के ग्राम में घुसकर उन्हें डराने लगा। ओम ज्ञान अतिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनम तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्रजातं शगन रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखानुतांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी धारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज बहुत बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन राधा कुंड का प्रकट हुआ था, तो ऐसा भी भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत बड़ा पवित्र दिन है, क्योंकि ये जो इसमें जो अरिष्टासुर ये कंस ने भेजा था ब्रजवासियों को कष्ट देने के लिए, तकलीफ देने के लिए, तो एक बैल के रूप में आया था। तो उस समय की बात है जब भगवान कृष्णा गोपियों के साथ राधा रानी के साथ रास नृत्य करने का तैयारी कर रहे थे, उस समय वृंदावन में वो प्रवेश किया। वो उसका इतना विशाल था वो अरिष्टासुर, कहा जाता है कि जब चलता था तो पृथ्वी कांपने लगता था, ऐसा लगता था कि भूकंप आने वाला है। उसका पैर को जमीन में उसका पैर को रेंगते हुए मिट्टी खोदते हुए आने लगा। तो अरे उसका जो बैल का उसका जो उसका उसको बोलते हैं ये गिले, उसका सिंह खंधे के ऊपर जो रहता है, इतना विशाल था कि पहाड़ जैसा। वो चारों तरफ जो बादल छाया जाता था उसके चारों तरफ, जैसा बारिश के टाइम पे हम देखते हैं पहाड़ के चारों तरफ ऐसा लगता है कि उन्हें बादल छाया जाता है, उसी प्रकार सिंह में मिट्टी को खोदते खोदते वो आता था। तो पूरा ब्रजवासी घबराए गए। उसका जो कार्य देखिए, तो ये शाम के टाइम पे वृंदावन में शाम के टाइम पे वो प्रवेश किया अरिष्टासुर। प्रवेश करके उसका एक ही उद्देश्य था, भगवान कृष्ण बलराम को वध करना। इसी श्लोक में प्रभुपाद जी महाराज बता रहे हैं कि असुर भगवान, उसका उद्देश्य रहता था भगवान कृष्ण बलराम को मारने के लिए, लेकिन शाम के टाइम पे जब गाय बछड़े जब अपने घर जा रहे थे उस टाइम पे वो प्रवेश किया, जोर जोर से भाग रहा था, मानो पूरी धरती को छिन्न भिन्न कर रहा है। जब आ रहा है तो नदी का जो बांध है ऐसा लग रहा है कि वो बांध उखड़ गया, एवं पानी यमुना का जो पानी है वो पूरा वृंदावन में बह गया, उसका जो चलने में जो भी बाढ़ था जब नदी का हेड़ का सब बाढ़ उखड़ गया, एवं बीच बीच में वो मलमूत्र भी त्याग कर देता था। उसके चिल्लाने से बहुत सारे जो गर्भवती गाय थे, गर्भवती महिला थे, गर्भपात हो गया उनका जो शब्द सुन के, जोर जोर से चिल्लाता था। तो प्रवासी अपने रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण के पास दौड़ के बोलने लगे, उन्हें भाग के भगवान को अपने दुख की बात बताए। यही भक्तों का स्थिति है, कभी भी हमारे भक्तों का जीवन में कुछ तकलीफ आए तो हम भगवान राधारास बिहारी जी को हमको प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है जहां पे भक्तों का कष्ट आया है और भगवान उसको तकलीफ दूर नहीं किए। ऐसा देखते हैं द्रौपदी, सीता महारानी, गजराज, पांडव, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, उनके जीवन में कितना कष्ट आया है, लेकिन हर समय भगवान को मदद की। तो जब अरिष्टासुर प्रवेश किया वृंदावन में तो उसका दहाड़ से, उसका गर्जन से भयभीत होके ब्रजवासी क्या किए, भगवान कृष्ण के पास चले गए बताने के लिए। तो भगवान को सांत्वना दिए, धैर्य धरो। तो अरिष्टासुर के पास जाके भगवान ने, आप बदमाश हो, मूर्ख हो, क्यों ही ब्रजवासी को तुम कष्ट दे रहे हो। तो अरिष्टासुर को भगवान क्या किए, एक हाथ में उसके गले को दबोच लिया, दबोच के क्या किए उसको वहां पे, जैसा एक हम गीला कपड़ा को जब साफ करते हैं, कपड़ा को हम जमीन में जब साबुन लगा के साफ करते हैं तो कितना पटक के मारते हैं, उसी प्रकार उसको बार बार मार रहे हैं अरिष्टासुर को। तो अरिष्टासुर भय के मारे बहुत जोर से चिल्लाया, तो बाद में जब भगवान अरिष्टासुर को वध किए, फिर वो रास नृत्य करने के लिए राधारानी के पास गए, गोपियों के पास गए, तो राधारानी बोले, डोंट टच, आप हमको स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए कि आप एक, आपका गोहत्या का दोष लग गया है। बोले, अरे वो अशुद्ध था, अशुद्ध को वध करना ही कौन सा पाप है। नहीं, वो फिलहाल वो असुर था, लेकिन वो और गाय का रूप तो धारण किया था, बैल का रूप धारण किया था, तो आपको गोहत्या का दोष लग जाएगा। तो जितना भगवान समझा रहे हैं गोपाधारणी गोपियों को, समझे नहीं, नहीं आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो क्या प्रायश्चित है, बल्कि विश्व में जितना तीर्थ स्थान है, होली रिवर्स जितना है, वहां पे आपको स्नान करके आना पड़ेगा। माने ये भारत में नहीं, पृथ्वी में, सारा ब्रह्मांड में लाखों तीर्थ स्थान है, वहां पे आपको स्नान करके आना पड़ेगा, तभी हम नृत्य में प्रवेश करते हो। तो भगवान कृष्ण बोले मैं क्यों सभी तीर्थक के पास जाऊं, मैं खुद ही उनको बुला लेता हूं, सब आ जाएंगे। तो भगवान स्मरण के सब तीर्थों तो सब वहां पे प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। तो भगवान क्या कि अपने पैर में वहां जो जमीन जोर से प्रहार किए, प्रहार के तो बहुत गड्ढा हो गया एवं सभी तीर्थ जल वहां पे रुके। तो भगवान को भगवान का गुणगान करने लगे। तो भगवान श्याम कुंड जब भगवान प्रवेश किए कुंड में, तो भगवान नाम के अनुसार उसका कुंड रखा श्याम कुंड। तो गोपियों को ब्रजवास राधा रानी को बोले आइए सब श्याम कुंड में स्नान कीजिए। तो बोले नहीं हम उस कुंड में स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस कुंड अशुद्ध हो गया है आपके स्नान के द्वारा, क्योंकि आप एक गोहत्या किए, गाय का दोष लग गया, फिर आप कुंड में स्नान किए, हम स्नान करेंगे वहां पे। तो जितना ही प्रार्थना की सुने नहीं, क्यों कहा जाता है राधा रानी भगवान कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी का सेवा करते हैं। उनका राधा रानी जब थक जाए तो भगवान उनको मसाज कर देते हैं, उनका श्रृंगार कर देते हैं, उनका पैर में सुंदर सजा देते हैं, उनका माथे को बिंदिया में सजाते हैं, उनका आंख में काजल लगा देते हैं, वो श्रृंगार करते हैं, हर समय राधा रानी का सेवा करते हैं। तो राधा रानी जब दुखी हो गई तो भगवान उनको मनाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो फिर सभी जो जितना तीर्थ थे उनका जो मेन प्रतिनिधि, भगवान उनको बोले कि जाओ आप राधा रानी को प्रार्थना करो। तो उस उनका जो मेन प्रतिनिधि है आके फिर राधा रानी को प्रार्थना किए कि आपको 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 भक्ति प्राप्त करिए, शिव जी का भी दुर्लभ है आपका प्रेम पाना, कृष्ण के प्रति चरण राधा रानी का भक्ति पाना शिव जी को भी दुर्लभ है, ब्रह्मा जी को दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है, आप कितने महान हैं, हमको उस सेवा का सुजोग दीजिए। तो बहुत उनका गुणगान किए सब तीर्थों ने राधा रानी को। जब गुणगान किए तो राधा रानी प्रसन्न हो गई। तो बोले क्या आप क्या इच्छा है? अरे कि हम चाहते हैं कि आप हमारे जल में आप स्नान कीजिए। तो पहली बात है जब भगवान कृष्ण जब राधा रानी जब मना किए कि हम स्नान नहीं करेंगे श्याम कुंड में, तो क्या क्या पूरा ब्रज गोपियों सब मिलके क्या किए घड़ा में, उस बोले हम ये मानसिंगार से पानी लाके पानी भरेंगे, जहां पे जिस स्थान पे अरिष्टासुर का पैर खुदाई किया था, ओ पैर का चिन्ह कुंड हो गया था, वहां पे पूरा पानी हम मानसी गंगा का पानी में भर देंगे, ये सोच रहे थे। तो भगवान उनको बोले क्यों तो आप इतना कष्ट कर रहे हैं, मैं थप तीर्थ को बुलाता हूं, वही आप सेवा कर देंगे। तो सभी तीर्थ ने प्रार्थना की राधा रानी को, राधा रानी प्रसन्न हो गई। बाद में सब जब उनको बोले क्या कामना क्या इच्छा का, तो बोले हम आपके सेवा में लगना चाहते हैं, हम भी आपकी कुंड में रहना चाहते हैं। तो जब प्रसन्न हो गई तो श्याम कुंड का जो जल है बहुत तीव्रता से राधा कुंड में प्रवेश किया एवं राधा कुंड में पूरा जल में भर गया वो। तो भगवान क्या किए, राधा रानी श्याम कुंड में स्नान किए, भगवान कृष्ण राधा में स्नान किए एवं राधा रानी ने बताया कि जो भी श्याम कुंड राधा कुंड में स्नान करता है उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। उसमें श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, सिराधा भाव लया चैतन्य अवतार जुगत नाम प्रेम कलयुग प्रचार। तो हमको कृष्ण का भक्ति प्राप्त करना है तो हमको चैतन्य महाप्रभु का जो मूड है राधा प्रेम विधुरा, राधा भाव में चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान को प्रार्थना की है, कृष्ण का प्रति जैसा प्रेम विकसित किए हैं, उसी प्रकार हमको रहना पड़ेगा। कहा जाता है चैतन्य अवतार कहे प्रेमामृत बन्या सवजीव प्रेम भासे पृथ्वी हैल धन्या ए बन्या रजे न भासे से जीव छार कोटि कल्पे तवेतार निस्तार। चैतन्य महाप्रभु का प्रेम में अगर हम नहीं डूबेंगे तो हमारा निस्तार ही नहीं है, कोटि कल्प में भी हमारा निस्तार नहीं है। चैतन्य भावना जो प्रेम है कृष्ण प्रेम में हमको रहना पड़ेगा। तो राधा कुंड और श्याम कुंड इसमें राधा रानी भगवान कृष्ण का स्वरूप है। तो इसका मेन उद्देश्य है जो भगवान कृष्ण खुद सभी तीर्थों को बुला के श्याम कुंड में सभी तीर्थ का जल है एवं राधानी का प्रार्थना से सभी तीर्थ प्रार्थना किए कि हम भी आपके सेवा में लगना चाहते हैं। तो गाय का जो अरिष्टासुर का जो पैर का जो खुर में जो गड्ढा हो गया था वही वहां पे वो श्याम कुंड का जल प्रवेश किया तो उसका नाम रहा क्या राधा कुंड। तो ऐसा ही राधा कुंड का प्रकट हुआ एवं श्याम कुंड का प्रकट हुआ। तो हमको ये हमारे चैतन्य हमारा गोड़िया मिशन में चैतन्य महाप्रभु धारा में हमको अगर शुद्ध कृष्ण प्रेम चाहिए तो हमको राधा रानी को प्रार्थना करना है, चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करना है। कहा जाता है अवतार सार गौर अवतार केनना भजिली तारे करी नीरे बास गेलना प्यास अपना कर्म फेरे। मैं चैतन्य महाप्रभु का भजन नहीं कर पा रहा हूं, मैं कितना हताभाग्य हूं, करी निर्वास गिरना प्यास अपना कर्म फिरे। वास्तव में बहुत मैं कुकर्म क्या हूं इसके लिए मैं चैतन्य महाप्रभु का प्रेम में डूबा ही नहीं अभी तक। कंटक सदाई से बिली अमृत पाईवार आसे प्रेम कल्पतरु श्री गौरंग अमार ताहरे भाबिली विषे। इस भौतिक संसार को एक कंटक तरु झाड़ कांटे का झाड़ कहा गया है। कोई व्यक्ति कांटे के झाड़ में अगर अपना पैर रख देता है तो क्या होगा, पूरा पैर से खून निकल जाएगा। कंटक तरु सदाई से बिली अमृत पाईवा रास, लेकिन मैं अपने को सोच रहा हूं कि इसमें मैं अमृत मिला, अमृत का आशा लेके इसमें मैं पैर रख दिया। प्रेम कल्पतरु श्री गौरांग अमार प्रेम का मूर्तिमंत स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु तहारे भाविली बिसे। मैं उनको जहर समझ रहा हूं, कृष्ण भक्ति को एक साधारण समझ रहा हूं। ब्रह्मांड कौन भाग्यवान जीव, जो भाग्यवान व्यक्ति हैं वही महाप्रभु के धारा में आते हैं। कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत है। कितना विपत्ति से देखिए, अरिष्टासुर जब कस्तिया निवासियों को, सभी जाके भगवान कृष्ण का शरणागत हो गए। लेकिन हमको जीवन में ऐसा प्रयास करना चाहिए, हर समय हमको कृष्ण का स्मृति हो। जैसा प्रभुपाद जी महाराज बताते हैं कि परीक्षित महाराज का 7 दिन समय था, हमारा 7 मिनट भी हम बोल नहीं सकते। तो क्या हमारा तैयारी है अभी, ऐसा हमको प्रस्तुति होना चाहिए कि हर समय, जैसा कहते हैं ब्रजवासी लोग भगवान को भूलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान को स्मरण करने कितना प्रयास करते हैं। ब्रह्मा जी ना कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि बराबर नहीं कर पाए, आंख बना लेकिन उसमें पलक बना दिए, देख नहीं पा रहे हम श्यामा सुंदर को। कंदर्प कोटि कमनी विशेष शुभम, इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं जैसं श्रीमंत सुधा सुतपत कमलई नास्त्री भक्ति नाराणं, जैसं आविर कन्या प्रिय प्रिय गुणगथनी नानुरक्त सज्ञा, जैसं श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादर नैव कर्णो धिक तांधिक तांधी गेतान कथते सततं कीर्तनस्त मृदंग। चैतन्य महाप्रभु चाणक्य पंडित कहते हैं जैसं श्रीमंत सुधा भक्ति नारायण, जो जसोदा सुत भगवान कृष्ण के चरण कमल में जिसका मन नहीं है, जैसा आबिर कन्या प्रिय गुण कथने नानु तरस, जो ब्रजवासियों का गोपियों का राधा रानी का सखियों का कथा श्रवण करने के माध्यम से श्रवण नहीं कर रहा है, जैसा श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा साधु नैव कर्ण श्रवण नहीं कर रहा है, तो क्या कहा जाता है मृदंग। मृदंग का ताल क्या बोलता है, उसका जीवन धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। बताइए जन कृष्ण भक्ति करिवारे, कृष्ण भक्ति बिना सबु मिथ्या है संसार है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताए जुगायत निमेशेण चक्षुषा प्रावृषायत शून्यायत सर्व गोविंद में, समग्र जगत मेरे को शून्य लग रहा है गोविंद के विरह में। युगायत निमेशेण चक्षुषा प्रावृषायत, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, चक्षुषा प्रावृष शून्यायत जगत सर्वं, समग्र जगत मेरे को शून्य प्रतीत हो रहा है गोविंद के विरह में। ये भाव चाहिए हमारा, भौतिक सुख सुविधा ये हमारा लक्ष्य नहीं है, कुछ समय के लिए कुछ पल का जिंदगी है। जैसा तालाब में हम एक पल देते हैं जब बबूल जैसा कुछ समय के लिए निकलता है, बाद में फिर पानी में मिल जाता है, उसी प्रकार ये जीवन है। कमल दल जल जीवन टलमल भजऊ हरिपद नीति रे, कमल का पत्ता जैसा पानी रख दे खाली हिलता रहता, कभी गिर जाए कुछ भरोसा नहीं, उसी प्रकार लाइफ है। हर समय ब्रजवासी गोपियों हर समय भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, हर समय सुख हो उनका उनका जो आनंद का एकमात्र उत्स था भगवान का श्याम सुंदर का रूप। कहा जाता है इतना कष्ट आया कंस जितना राक्षस को भेजा मारने के लिए, बकासुर सकटासुर धेनुकासुर अरिष्टासुर, लेकिन इतना होने के बाद भी जो भगवान कृष्ण का जब रूप को दर्शन कर देते थे सब कुछ भूल जाते थे, सब कुछ कष्ट चला जाता था, वो कष्ट प्रतीत नहीं होता था। हमारा कष्ट क्या है, सबसे बड़ा कष्ट इस संसार में जो रुके हैं ये सबसे बड़ा कष्ट है। यहां से कैसा हमको यहां पे शुद्ध भक्ति प्राप्त करके कैसा अपने लक्ष्य पाएंगे, इस शरीर में आत्मा के ऊपर ये शरीर है, ये सबसे बड़ा कष्ट है। बाहर संसार का कष्ट तो छोड़िए, आत्मा के ऊपर एक जो आवरण मिल गया है, ये शरीर सबसे बड़ा कष्ट है। इसलिए कुलशेखर क्या बोलते हैं, प्राण प्राण समय कपबात वित्तो कंठावरुद्ध वदनम कुतस्थे। हे प्रभु, मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल को स्मरण कर रहा है, जब मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा तब मैं आपका नाम उच्चारण नहीं कर पाऊंगा, आपको स्मरण नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अभी मेरे को आप ले जाइए। ये भक्तों का प्रार्थना होना चाहिए, और अच्छा से रहें और अच्छा सुविधा मिले, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। जितना जल्दी, प्रभुपाद बोलते हैं 100 साल 120 साल जिंदा रह के क्या फायदा, थोड़ा सा समय जिंदा रहो, थोड़ा समय शरीर रहे, ताकि हम अच्छी तरह से भगवान को भक्ति कर सकें, भगवान को स्मरण कर सकें, ताकि हमारे जीवन का सफल है। कोई कोई बोलते हैं बहुत साल, मेरे को 80 साल हो गया है, 100 साल हो गया, ये अभिमान नहीं है। अभिमान क्या है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के अच्छा सेवक बन सकें। जैसा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अपने मुख में घास का तिलका लेके चैतन्य महाप्रभु को प्रेयर कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, इसलिए हर समय साधु गुरु वैष्णव का कृपा के ऊपर हमको आश्रय करना चाहिए। साधु गुरु कृपा बिना कृष्ण भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरथा को संसार न है। कृष्ण का भक्ति दूर की बात है, संसार का बंधन भी नहीं जाएगा अगर वैष्णव साधु का अगर कृपा नहीं मिलेगा तो। ब्रजवासी गोपी कितना भगवान का कितना प्रिय है, जैसा आप कहते हैं साधन सिद्ध कृपा सिद्ध नित्य सिद्ध, तो नित्य पार्षद है। एवं जो भी साधना करके उस स्तर जाना चाहता है, वो अंतिम में अगर भगवान कृष्ण का लीला स्मरण करके शरीर छोड़ता है, तो इस ब्रह्मांड में हर जगह भगवान एक ब्रह्मांड में लीला हो गया, दूसरे ब्रह्मांड में वहां लीला करते हैं, तो भौतिक संसार का कोई ना कोई ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं, वही ब्रह्मांड में कोई गोपियों का घर में वो जन्म होते हैं एवं भगवान के लीला में पार्टिसिपेट करते हैं, एवं वहां पे अगर ट्रेंड हो गए तो फिर भगवान अपने धाम पे उसको ले जाते हैं। तो हम वो कितना तपस्वी कितना भाग्यशाली है जो भगवान के लीला में सहयोग करे, भगवान समय लगे हैं। कांदे बोले अहे कृष्ण आमी तव दास, तुम्हारा चरण छाड़ी हईनु सर्वनाश। भक्त प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं आपका दास हूं, मैं आपका नित्य सेवक हूं, लेकिन किसी ना किसी कारण से भवन सागर से मैं पड़ गया हूं, तुम्हारा चरण छाड़ी हईनु सर्वनाश, मेरा सर्वनाश हो गया है, सब कुछ मिल रहा है लेकिन भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, भगवान का भक्ति नहीं हो रहा है, तो क्या फायदा। एवं भगवान को स्मरण हो रहा है, भगवान का चरण कमल को स्मरण हो रहा है, भगवान को भक्ति हो रहा है, भक्तों का प्रति हमारा प्रेम बढ़ रहा है, साधन वैष्णव के प्रति श्रद्धा जागृत हो रहा है, तो सब कुछ ना होते हुए भी, भौतिक संसार का सुख सुविधा ना होते हुए भी वो आनंद में रहता है जो प्रकृति में भगवान को भक्ति करता है। सुदामा को कितना लोग द्वेष कर रहे थे, कितना निंदा कर रहे थे, ये फटा कपड़ा पहना है, कुछ नहीं है, झोपड़ी में रहता है, घर में परिवार को चला नहीं पा रहा है, लेकिन 24 आवर्स अनन्य कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं। चाणक्य अपने कहते हैं का चिंता मम जीवन यदि हरि विश्वंबर गियते नर चतुर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम गियते इत्तलुच्य मूर्मूर। हे जदुपते, हे लक्ष्मीपते केवलम पादामृत सेवनम कथं निस्सरेत। बोल रहे हैं मैं जीवन में क्यों चिंता करूं, कहा चिंता मम जीवन यदि हरि विश्वंभर ज्ञाते, अगर विश्वंभर हरि मेरे रक्षण कर रहे, मेरे को प्रसन्न कर रहे, कृष्ण एक नाम विश्वंभर, वो मेरे को पोषण कर रहे, तो मैं क्यों चिंता करूं। कहा चिंता मम जीवन यदि हरि विश्वंभर ज्ञाते, अगर विश्वंभर अगर रक्षण विक्षण नहीं करते तो जन्म होने से पहले भगवान मातृ स्तन में दूध का संचार किए हैं, ये कहां से आता, पुष्टिकर खाद्य जन्म होने से पहले। ये मैं सोच के, हे जदुपते, हे लक्ष्मीपति, हे जदुपति, हे लक्ष्मीपति, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपको बहुत अशेष अशेष धन्यवाद, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। चाणक्य पंडित बोल रहे हैं, देखिए हम जो स्थिति में हैं, संतुष्ट व्यक्ति संसार में आनंद रह सकता है। ऐसा ब्रजवासी वो भगवान कृष्ण को देख के लीला में अनुसरण करके उनका स्वरूप, उनका श्याम सुंदर रूप को दर्शन करके परम आनंद में थे। वही आनंद चाहिए हमको, तब हम जीवन में, हमारे जीवन आत्मा आहार तब मिल सकता है। हर समय भगवान के सेवा में लगे थे। तो अरिष्टासुर इतना कष्ट दिया, उसके पहले भी बहुत सारे कष्ट दिए, लेकिन भगवान को देख के सब कष्ट भूल जाते थे। यही भक्तों का भाव होना चाहिए। कारण कहा जाते हैं पदम पदम विपदा न देशम, हर मोमेंट में विपद है जीवन में। अभी 10 मिनट के बाद क्या होगा हम बोल नहीं सकते। कैंसर, डायबिटीज, शुगर, क्या क्या बीमार होता रहता है बताइए, कब कुछ हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए जितना समय मिला है कभी हमको मिस यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, ठाकुर जी को, रूपा जी को, कि उनके हम संस्थान में, उनके सेवा में, उनके मंदिर में है। एवं समय को हर समय श्रवण कीर्तन में, अध्ययन में, भगवान का कथा चर्चा, कृष्ण का कथा श्रवण में हमको हर समय लगाना चाहिए, तब समय का सदुपयोग हो सकता है। नहीं तो समय ऐसा ही जा रहा है, सूर्य उदय हो रहे, निद्रा ह्यते नक्तं विवाहवाभ्यं दिवाचार्तराजन कुटुंब भरणे नवा। एक ग्रस मटेरियलिस्टिक पीपुल जो है, निदाग भौतिकवादी व्यक्ति, उसका समय कैसा बीत रहा है। निद्रा है तेनक तंग शोक चला जाता है, संतान जन्म कर, ओ संतान जन्म करने में सो के समय चला जाता है। एवं सुबह क्या है, दिवा चढ़ता है यार राजन, कैसा मैं परिवार को भरण पोषण करूंगा, उसमें चला जाता है। लेकिन भक्तों, हम एक भक्त होके, ये भक्त का एक गरिमा है, भक्त का एक मर्यादा है, साधु का एक कपड़ा का कितना कीमत है, थोड़ा भी दाग नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हम समाज में, हम एक वैष्णव समाज में हैं, हम एक दिश, हमको एक, हमारा एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए हम यहां आए हैं। लेकिन उसके बीच कोई भी हमको बाधा आ जाए, भौतिक का भोग विलास हो, कोई सुख सुविधा हो, उसमें हम बीच में अटक जाएंगे तो फिर ना हमको कितना धर्म लग जाएगा। जैसा रवि महाराज बताते हैं, कोई व्यक्ति तीव्र गति में प्रयास करता है भक्ति में, तो ऐसा ही उसको 4-5 जन्म लग जाता है। लेकिन ढीला भक्ति करते हैं तो कई जन्म लग जाए कुछ भरोसा नहीं। एवं 4-5 जन्म कोई बड़ी बात नहीं है। कहा जाता है समुद्र में जितना बालू का टुकड़ा है, हो सकता है एक योगी अपने तपस्या के बल से उसको गिन सकता है, लेकिन ये आत्मा कितना जो शरीर धारण कर चुका उसका हिसाब नहीं। तो 3-4 जन्म कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अच्छे भगवान को भक्ति करना है। भगवान बोल रहे हैं, जो भगवान को भक्ति कर रहा है, भगवान ने अच्छा परिवार में, वैष्णव परिवार में जन्म देते हैं। एवं हमको प्रार्थना करना चाहिए, हर समय भगवान का गुणगान करें, भगवान को स्मरण करें, भक्तों के साथ रहें, भक्तों के साथ ना छूटे। अकेला कभी भी हम भक्ति नहीं कर सकते, जितना भी हम, कितना बड़ा विद्वान पंडित, कितना शास्त्र के ऊपर ज्ञान तक ना हो, कृष्ण के संग में भगवान के प्रति भक्ति करना चाहिए, तब हमारा भक्ति एक दिन सुदृढ़ हो जाता है। एवं कहा जाता है जैसा चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर काले का धब्बा दिखाई पड़ता है, उसके कारण चंद्रमा के किरण में कोई बाधा नहीं आता, उसी प्रकार कोई वैष्णव भक्त ज्ञात अज्ञात सार में कुछ गलत भी कर भी देता है, लेकिन वो भगवान के सेवा में अगर जुड़ा जाता है तो उसका जो गलती किया है उसको क्या होता है, सब भगवान उसका गलती माफ कर देते हैं। जेन कारण कृष्ण निवेश, इसी तरह से भगवान के प्रति, भगवान के चरण कमल के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति हमारे मन लगा रहे। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। अगर प्रेम चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए तो क्या जरूरत है, भगत सेवा परम सिद्धि। परम सिद्धि सकता है कोई भगवान महान वैष्णव का अगर सेवा करेंगे तो, एवं प्रेम प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण के प्रति, हमारा श्रद्धा बढ़ा सकते हैं। भजन हमारा, भजन का पहला स्टेज है आदो गुरुवास है, तब भजन स्टार्ट होता है। हम पहला हमारा आके हम क्वेश्चन पूछना चालू कर देते हैं, ये गलत है। हमको सेवा लगना चाहिए, हमारे इंद्रियों को उसके के सामने लगाएंगे तो भगवान कृष्ण के कृपा से, गुरु का कृपा से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित अंदर से आ जाता है, उसके बाद हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन जो शिष्य आता है मंदिर में जो भक्त बनने के लिए, उसको ज्यादा से भगवान के सामने लगना चाहिए। ब्रजवासी लोग हर समय, गोपियों ब्रजवासी हर समय भगवान के सामने लगते थे, कैसा हम हमारे प्रियतम को, कैसा हम हमारे सखा को हम अच्छे से रखें, उनको प्रसन्न करें, कोई कभी भी उनके तकलीफ ना दे, ये भक्तों का भाव होना चाहिए। तब हम जीवन में अपना हर समय अपना कैसा सुख रह सकते हैं, अपना जीवन में कैसा आनंद आएगा, कभी करोड़ जन्म भी नहीं सकता। कारण ये शरीर मिला है, भगवान तो बोल रहे हैं इस शरीर ही दुख का कारण है, तो हमको इस शरीर को शुद्ध कैसा कर सकते हैं, भक्तों का सेवा करके, गुरु का आश्रय करके कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं उनके कृपा से। तो यहाँ पे आज का जो दिन है बहुत बड़ा पावन दिन है, राधा कुंड का प्राकट दिवस है। तो हम यहाँ पे कैसा राधा कुंड का प्राकट्य हुआ उसके बारे में बताएं, एवं जो ब्रजवासी का, जो गोपियों का, राधा रानी का जो भाव है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, उसको प्रार्थना करना चाहिए हमको, राधा रानी को आज के दिन, कि हमको आपके प्रियतम के प्रति जैसा प्रेम है, कृष्ण के प्रति जैसा भाव है, ऐसा थोड़ा सा मात्र भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कथा का विराम करता हूँ। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, राधाकुंड प्रकट दिवस की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, स्वमीत भक्तवृंद की जय, दाई गौर प्रवनंदे हरि हरि, वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णववृंद की जय। किसका कोई प्रश्न है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण रोजी, जैसे आपने इस लेक्चर में कहा कि आपने शब्द ब्रजवासी यूज किया, ताकि जैसे अरिष्टासुर जब चीख रहे थे, दहाड़ रहे थे, तो सभी ब्रजवासी कृष्ण की ओर दौड़े और उन्हें बताने लगे कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, ताकि वो हमें रक्षा कर सके। तो मैं पूछना चाहूंगा कि ब्रजवासी का मतलब यहाँ पे छोटे जो ग्वाल फ्रेंड्स होंगे वही होगा कि सभी ब्रजवासी होंगे? ये
जो भी ब्रज में रहते हैं सब ब्रजवासी हैं।
तो फिर प्रश्न ये है कि जब इस समय तो कृष्ण बहुत छोटे थे, तो ब्रजवासियों को पता नहीं था कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, तो इस भाव से गए कि छोटे बच्चे के पास कैसे गए कि आप हमारी रक्षा करिए इस असुर से?
देखिए वहां पे क्या है, भगवान का अंतरंगा शक्ति कार्य करता है, तटस्था शक्ति। जैसा पांच प्रत्यक्ष संबंध है एवं सात परोक्ष संपर्क है, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, ऐसा पांच। तो वहां पे भगवान कृष्ण तो जैसा मतलब कोई सखा के रूप में, जैसा ब्रजवास जहां पे भगवान जब रासलीला किए तो सब गोपियों सोचते थे कि भगवान हमारे पास है, हमसे अलग नहीं है। तो ब्रजवासी लोग हर समय अलग अलग भाव से भगवान के साथ संपर्क था उनका, जैसा राधारानी का, गोपियों का एवं सखाओं का, अलग अलग भाव से। एवं उस समय भगवान जब गाय चराते थे उसमें बालक रूप में थे, लेकिन जैसा गोपियों लोग ये ब्रजवासी लोग कोई उनका पुत्र रूप में जाता था, जैसा भगवान जब ब्रह्म विमोहन लीला किए तो जब बछड़े को जब हरण कर लिए गाय बछड़े को, तो भगवान कृष्ण स्वयं अपने को गाय के रूप में विस्तारित किए, बछड़े के रूप में विस्तारित किए। एवं जो गोपियों का इच्छा था कि हम भी एक दिन भगवान कृष्ण को अपना दूध पिलाना चाहते हैं, तो फिर भगवान उनका कामना को पूर्ण करती है एवं सब ब्रजवासी का इच्छा पूर्ण की। जब गोपियों का सब को सब उसमें सखा लोग सखा बन गए, बछड़े बन गए, गाय, भगवान कृष्ण जैसा पहले हो चुके थे वैसा फिर भगवान अपने को विस्तारित कर दिए। सब जैसा पहले उनका इच्छा था भगवान के साथ वैसा संपर्क फिर स्थापन किया। तो ये ब्रज है ना, ये अचिंत्य है, इसमें हमारा बुद्धि से काम नहीं हो सकता। उसमें चाहे तो जैसा कहा जाता है भगवान जब रासलीला किए, कितना मैंने कहा जाता है 64 करोड़ गोपियों के साथ रासलीला किए। तो आप सोचेंगे वृंदावन तो छोटा सा नहीं, 64 करोड़ जगह में स्थान आया, ऐसा नहीं है। भगवान अपने योग में उसको विस्तारित कर देते हैं फिर संकुचित कर देते हैं। तो इसलिए योगमय पटन से भगवान कृष्ण का अंतरंगा शक्ति है वहां पे। जो भी भगवान वहां पे लीला किए हैं वो भगवान का शक्ति का ही विस्तार है, समझ गए बस। और किसका कुछ प्रश्न है? श्रीमद भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निदाय गौर प्रमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण।